भागतम किस क्लास में आज हम एक सोलह का सत्रहवां श्लोक और आठवें श्लोक पर विचार करेंगे अठारहवें में। तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वः ना तु दूरे किलाश्चर्यम् यदासीत् निबोधमे। तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वः ना तु दूरे किलाश्चर्यम् यदासीत् निबोधमे। तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वः नाति दूरे किलाश्चर्यम् यदासीत् तन्निबोधमे। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। मुख्य श्लोक अठारहवां पढ़ते हैं। धर्म पदे के अंतरण इच्छायाम उपलब्ध गाम पृच्छति समश्रुवदनाम विवच्छामि मातरम। धर्म पदे केन चरन विच्छायाम उपलभ्यताम पृच्छति समश्रुवदनाम विवच्छामि मातरम। धर्म पदे के निचरन विच्छायाम उपलब्ध गाम पृच्छति समाश्रुवदनाम विवत्सामिव मातरम। धर्म पदे के निचरन इच्छायानुपलभ्य गाम पृच्छति समाश्रुवदनाम विवत्सामि मातरम्। धर्म पदे के निचरन इच्छायानुपलभ्य गाम पृच्छति समाश्रुवदनाम विवत्सामि मातरम्। धर्म पदे के चरण विच्छायानुपलभ्य गाम पृच्छति समश्रुवदनाम विवत्सामि मातरम्। माता जी पढ़ो। चलो अब शब्दार्थ और तात्पर्य गुरु श्रील प्रभुपाद की। धर्म साक्षात धर्म पदा पांव से एकेन एक ही चरण विचरण करके विच्छायाम शोक की छाया से ग्रसित उपलब्ध मिलकर गाम गाय को पृच्छति पूछते हुए सम सहित अश्रुवदनाम मुखमंडल में आश्रों सहित विवत्साम बिना बछड़े की इव सदृश मात्रम माता को साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रसन्न किया। मेरे साथ दोहराइए, साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दीख पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तात्पर्य, बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों में अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज उन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नतापूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल और गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर बैल और गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति और संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। ओम अज्ञान किमरांधस्य ज्ञानांजन शिलाकीय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोज संस्थापितं येन भूतले स्वमरूप सदा मह्यं ददाति सुखदंतिकं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगणितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले चिन्तयभक्तिवेदान्त स्वामिने नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रसन्न किया। श्लोक में बताया गया है कि धर्म बैल धर्म का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। गाय संतापग्रस्त होती है जब उससे आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। असुर लोगों द्वारा उग्र कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे कर्म किए जाने लगते हैं। हम भगवान के अवतरण से पहले पढ़ते हैं कि गाय ने पृथ्वी का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गए, सारे देवताओं को लेके, वहां से शिव जी को भी साथ लिया और सब क्षीर सागर के तट पर जाकर एक द्वीप में भगवान से प्रार्थना करने लगे। गाय का कष्ट क्या था? जनसंख्या वृद्धि गाय का कष्ट नहीं होता, इसका पृथ्वी का कष्ट नहीं होता। पृथ्वी का कष्ट था कि आसुरी प्रवृत्ति के राजा और उनकी सेनाएं संसार में उपद्रव मचा रहे थे। इसी कारण से पृथ्वी ने उनसे निजात दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की इन सभी देवों के माध्यम से। और भी हम आगे पढ़ते हैं, एक असुर राजा हुए हैं वेण महाराज, वेण थे तो वह भक्त के पुत्र, उनके पिता अंग थे जो ध्रुव महाराज के पांचवी पीढ़ी में पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज का वंश तो बड़ा पवित्र है, शुद्ध भक्तों का, महाभक्तों का वंश है। तो महाराज अंग यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में देवता कोई आहुति लेने के लिए नहीं पहुंचे। हवन किया था ब्राह्मणों ने पूरे मंत्रों के साथ वैदिक विधि से पूरे, और सभी सामग्री वगैरह सब कुछ शुद्ध थी, मंत्रोच्चारण शुद्ध था, कोई कमी नहीं थी यज्ञ में। फिर भी देवता उनके यज्ञ में अपना भाग स्वीकार करने के लिए नहीं आए। उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से कि क्या बात है, देवता लोग क्यों नहीं आ रहे मेरे यज्ञ में अपनी आहुति स्वीकार करने के लिए। तो भृगु मुनि ने उनको बताया कि निसंदेह आप इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपने पूर्व जन्मों में पाप किए हैं जिसके कारण आप निसंतान हो, उनको कोई पुत्र नहीं था। तो उनने भृगु मुनि ने बताया कि तुम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो, उसमें पुत्र की याचना करो। तुमने यज्ञ किया, एक यज्ञ पुरुष का प्रतिनिधि उसमें से यज्ञ से प्रकट हुआ और उन्होंने एक खीर का कटोरा दिया कि तुम अपनी रानी को ये खिलाओ और फिर वो तुम्हारे से गर्भवती होगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ समय पे, और वो ये महाराज वेण थे। तो ये इतने दुराचारी थे कि जब बालपन में भी अपने समकक्ष अपने समायोग बच्चों को मारते रहते थे, पशुओं की तरह जान से मार देते खेलते खेलते भी। और जंगल में जाते तो जंगल में भी जाके पशुओं को, निरीही पशुओं को बिना किसी कारण के मारते रहते थे, जो भी सामने आता उसी को मार देते, हिरणों को मार देते। तो इतने करूर थे। तो राजा बहुत दुखी हुआ, पर उसने ब्राह्मणों से सलाह की कि भी इसका क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा कि भी इसको तो आप इसको त्याग दो। उसने कहा कि भाई मैं पुत्र बिल्कुल ना होने से तो पुत्र भी अच्छा है, हैं, पुत्र ना होने से तो कोई गति नहीं होती व्यक्ति की, इसलिए कुपुत्र ही सही ठीक है, ऐसा ऐसा ही समझ जाएगा। लेकिन वो नहीं समझा, वो नहीं समझा। तो ये दुखी होके और एक दिन अपनी पत्नी को छोड़ के, सोती हुई रात को छोड़ के और बाहर चले। इसमें लिखा गया है कि भाई इनको, इनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी अच्छी स्त्री नहीं थी, वो मृत्यु की पुत्री थी साक्षात। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, भक्तों भगवान सहायता करने के लिए अनुकूल पत्नी नहीं देते और अनुकूल पुत्र भी नहीं देते ताकि उनकी घर में आसक्ति ना हो किसी तरह की। तो यही इनके साथ हुआ, महाराज उनके साथ वो छोड़ के चले गए और बाद में उन्हें भक्ति की भगवत धाम प्राप्त किया महाराज ने। तो ये वेन जो है जब राज्य विहीन हो गया, राजा तो राजा नहीं था वहां का राज्य का, तो ब्राह्मणों ने फिर मीटिंग की सरस्वती नदी के किनारे और उन्होंने फिर निश्चय किया कि भाई चलो राजा ना होने से तो कुछ तो होना अच्छा है, हम इसके बाद में सलाह देंगे, सलाहकार तो हम ही हैं। तो उन्होंने उसको वेण को राजा बना दिया। वो भी उसी चलन पे चला फिर भी, और भी उसमें घमंड हो गया। वो अपने रथ पे सवार होता और जाके अपने राज्य में घूमता सारी जगह और सबको ये आदेश दिया उसने कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, अब से कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेगा, ब्राह्मणों का और गाय का संरक्षण नहीं होगा। तो उसने वैदिक संस्कृति को बिल्कुल समाप्त करने का निश्चय कर लिया और कहा सारे देवताओं को भी, वो ये कहता था कि ये देवता तुम मेरे अंग हैं, तुम मुझे आहुति दो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरी स्तुति करो, तब देवता प्रसन्न होंगे। देवता कोई मेरे से ऊपर नहीं है, मैं स्वयं भगवान के समान हूं, तुम किसकी पूजा करते हो, तुम तो तुम देवताओं की पूजा करते हो, तुम तो उस उल्टा स्त्री की तरह हो जो अपने पति को नहीं मानती, मैं असली पति हूं तुम्हारा, मेरे लिए सब कुछ करो। ऐसा अधर्म के कार्य उसने शुरू कर दिए। तो ब्राह्मणों ने उसको फिर दोबारा समझाया बुला के ऋषियों ने मुनियों ने, लेकिन वो नहीं माना। ब्राह्मणों ने क्या किया, उसको एक मारने का निश्चय किया कि हम इसको अपने ब्रह्म तेज से मार देंगे और उन्हें हुंकार मात्र से इसका वध कर दिया। तो उसकी माता सुनीता जो थी वो मृत्यु की पुत्री थी, उसने उसको, वो विद्या जानती थी कोई, उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया कुछ केमिकल्स लगा के। तो प्रिजर्व कर लिया, फिर क्या ब्राह्मण ने सोचा कि भाई ये तो एक बार, फिर उन्होंने सोचा कि भाई चोर उचक्के बहुत बढ़ गए हैं, राजा नहीं है कोई, इसलिए राज्य में चोर उचक्के, एक तरफ को वो उदाहरण देते हैं उसने मैत्रेय मुनि कि ये तो ऐसी प्रजा का ऐसा हालत हो गया जैसे बीच में लकड़ी, कोई गट्ठा है लकड़ी का, उसके दोनों तरफ आग लगी और बीच में चीटियाँ फंसी हुई, वो कहाँ जाएंगी, एक तरफ तो चोर उचक्के और दूसरी तरफ ये क्रूर जो है, कोई राजा नहीं है उनसे सुरक्षा करने वाला हमारा है, हम क्या करें। तो फिर ब्राह्मणों ने उसको जब मार दिया तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि तू राजा को होना चाहिए। उन्होंने उसकी जो है महाराज वेण की जांघों को मथा, कोई विधि वो जानते थे, उस विधि से उसकी जांघों को मथा और उनकी जांघों से एक बौना और काला पुरुष उत्पन्न हुआ जो उसको कहा उन्होंने। उसने पहले उन ब्राह्मणों से पूछा कि बोलो मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा निषद, तुम बैठ जाओ, निषद का मतलब है बैठ जाओ। तो उससे वो निषाद उसका नाम पड़ा। निषाद जाति जो है वो प्राय क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब वो जंगलों में ही रहते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। तो इससे ये हुआ कि उसके शरीर में जो पाप था वो पाप निकल गया, वेन के शरीर से पाप को निकल गया। फिर उन्होंने उसकी दोनों बाहुओं को मथा, बाहुओं को मथने से उसी विधि से, वो विधि जानते थे ब्राह्मण जो है, तो उस विधि से मथने से उसके दो, एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न हुए दोनों। तो पुरुष जो था वो साथ साथ भगवान का अंश था, भगवान विष्णु का अंश था, और वो कौन हुआ, भगवान के शक्त्यावेश अवतार महाराज पृथु। और दूसरी बाजू से जो स्त्री उत्पन्न हुई थी वो साक्षात लक्ष्मी का अंश थी जो अर्ची नाम से जिनका नाम पड़ा। और बाद में काफी टाइम के बाद उन्होंने दोनों ने आपस में विवाह कर दिया और पति पत्नी बन गए दोनों। तो पृथ्वी महाराज जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने यज्ञ किए काफी, उन्होंने 99 यज्ञ किए थे वैसे तो पूरे जिंदगी में, और 100वां यज्ञ जब वो कर रहे थे तो इंद्र को चिंता हुई, इंद्र का शासन तोड़ने लगा कि ये तो मेरा पद लेगा, तो इंद्र ने फिर उसका घोड़ा चुरा लिया। ये कहानी बाद की, ये बाद में आई, पर पहले क्या हुआ, जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ की आहुति लेने के लिए उस टाइम भी कोई देवी देवता नहीं आ रहे थे वहां, तो उन्होंने सलाह की कि भाई देवी देवता अब नहीं आ रहे हैं और मैं अब क्या करूं, तो आप आगे यज्ञ करो, पहले शुरू शुरू के यज्ञ की बात है। जब और यज्ञ उन्होंने किए तो फिर क्या हुआ कि यज्ञ करने के बाद उनकी प्रजा जो इकट्ठी होकर उनके पास आई कि महाराज हमको भूखे मर रहे हैं, हमारे शरीर देखो सूख के कांटा हो रहे हैं, और पृथ्वी से ना तो अन्न निकल रहा है ना कोई फल फूल कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रही है, क्या कारण है इसका। तो महाराज पृथ्वी ने क्या किया, अपना धनुष बाण उठाया और उस पृथ्वी को मारने के लिए बाण का संधान किया उन्होंने। तो पृथ्वी घबरा के, जैसे भगवान राम से समुद्र घबरा गया था, ऐसे पृथ्वी भी एक देवी है। सारे पर्सनैलिटी जो होते हैं, जैसे हम गंगा माई को कहते हैं, जमुना माई को कहते हैं, मां कहते हैं ना उनको भी, ऐसे ही सारे पर्वत भी जो है वो पर्सनैलिटी होते हैं, उनके भी एक देवता होते हैं, एक ही स्टोर देवता ऐसे ही बनते हैं। पृथ्वी भी एक देवी है और वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो जब उन्होंने बाण चलाने के लिए तैयारी की तो पृथ्वी जो है वो गाय का रूप धारण करके पुनः उनके सामने आई। तो यहाँ पे विदुर पूछते हैं मैत्रेय मुनि से कि पृथ्वी ने गाय का रूप ही क्यों धारण किया, वो तो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि गाय अवध्य है, गाय का वध नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया है गाय अवध्य है, ब्राह्मण अवध्य है, शिशु छोटे बच्चे अवध्य हैं, बूढ़े अवध्य हैं, तो इनका वध नहीं किया जा सकता। स्त्री अवध्य है, चाहे वो कितना भी पाप करें, इनका मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि भाई इनका वध नहीं किया जा सकता सबका। तो महाराज पृथु उस पृथ्वी को फिर भी मारने के लिए तैयार उसका पीछा करते हुए, जब वो गाय का रूप उसने धारण कर लिया फिर भी उसको मारने के लिए वो पीछा करके, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्यों क्यों मारने को तैयार थे वो उसको, क्योंकि वो कोई अन्न या कोई भी फल फूल कुछ भी उपजा नहीं गई, कोई भी बीज उसके अंदर जो थे ब्रह्मा जी ने जो बीज उसमें आरोपित किए थे उनको वो प्रकट नहीं कर रही थी, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं उग रहा था उसका ही। तो पृथु महाराज ने कहा कि तुम नहीं, ये अन्न नहीं उपजा रहे हो, मेरी प्रजा जो भूखी मर रही है, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वो गाय के रूप में वो सारी जगह फ्री आकाश में स्वर्गलोक में भी गई, पर पृथु महाराज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो गाय ने बड़ा समझाने का प्रयास किया कि महाराज आप तो साथ साथ भगवान के अवतार हो, आप धर्मज्ञ हो, धर्म जानते हो, और धर्म के मुताबिक गाय का वध नहीं किया जा सकता, और फिर मैं स्त्री भी हूँ देवी हूँ, स्त्री का भी वध नहीं किया जा सकता, आप मेरा वध क्यों कर रहे हो। और आपने तो मुझे वर्रा अवतार में गर्भोदक समुद्र से निकाला था, मेरी रक्षा की थी, आप अब क्यों मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। तो उसने ये फिर पृथ्वी देवी ने ये बताया उनको कि मैं अन्न क्यों नहीं उपजा रही हूं। तो उसने कहा कि भाई बहुत समय से आसुरी लोग मेरा भोग कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग कर रहे थे, यज्ञों के लिए नहीं वो करते थे, जितनी भी जड़ी बूटियां जितनी अन्न सामग्री जो भी उत्पन्न होता है उसका प्रयोग वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे, भगवान के यज्ञ के रूप में नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको सबको अपने अंदर समाहित कर लिया, और मैं अब इतना टाइम हो गया है कि वो बिल्कुल मेरे अंदर विलीन हो चुके हैं, उनके उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। और आप एक काम करो कि इस पृथ्वी को जो है समतल करो सारी को, उससे पहले पहाड़ों के रूप में थी, कई पहाड़ थे कई खड्डे थे, ऐसी ऐसी पृथ्वी थी। महाराज पृथु जो पहले टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं, उन्होंने गाँव का और शहरों का जो है ये व्यवस्था उन्होंने की थी, महाराज कृष्ण ने, और सारी पृथ्वी को उन्होंने समतल किया था। समतल होने के बाद पृथ्वी जो है उसमें जो वर्षा का जल होता था वो ठहर जाता था और वो अन्न उत्पन्न करने लगी। तो ऐसा प्रभाव होता है कि जब पृथ्वी देवी पे आश्री प्रवृत्तियां विवक्त होती हैं, जैसे कि आज के समाज में आप देख रहे हैं। ये बताया गया है कि कलयुग जब शुरू होता है, कलयुग के लक्षण जो है वो पहले ही प्रकट, संध्या काल में ही प्रकट होने लगते हैं। जब दो युगों की संध्या होती है, पहला युग समाप्त होने वाला है, अगला शुरू होने वाला है, उसको संध्या काल कहते हैं, और संध्या काल में ही अगले युग के लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं। भागवतम में ये लिखा गया है, ये 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कलयुग के बारे में अनेक भविष्यवाणियां की गई हैं, और उसमें ही ये पहला श्लोक दूसरे अध्याय का है, ततश्च अनुदिनम धर्मे सत्यम शोतम क्षमा दया कालेन बलिदा राजन नक्षम की आयु बलम समृद्धि। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे महाराज, कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्य, शोचम शुद्धि मतलब क्षमा और दया भाव, आयु और समृद्धि और बल, ये आठों चीजें जो हैं ये इनका ह्रास होता रहेगा। और ये आगे फिर जब सूत गोस्वामी कथा सुनाने लगे नमिशरण के ऋषियों को, तो वो भी कहते हैं प्रायण अल्पायु सा सभ्य अस्मि कलो युगे जना मंदा सुमद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता। ये भविष्यवाणी को सत कर रहे हैं कि कलयुग में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। पहले तो भविष्यवाणी की थी, सिर्फ भागवतम के 12वें स्कंद में अनेक भविष्यवाणियों की गई, उसमें जो है कलयुग के सारे राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, जितने राजा हुए हैं आज तक उनके सब के नाम लिखे हुए हैं। आज के इतिहासकारों को पता ही नहीं है 2500 साल से पहले क्या था संसार में, कौन राज्य कर रहा था, पर भागवतम में सारे राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। इवन लक्षण से अंग्रेजों के और मुसलमानों के भी नाम लिखे हुए कि भाई ऐसे ऐसे राजा भी होंगे वहाँ कलयुग में। इसमें चाणक्य पंडित और चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया हुआ है, नंदवंश का पूरा उल्लेख किया हुआ है, पूरे जितने नंदवंश के राजा वो उनका सबका नाम दिया हुआ है। ये तो आधुनिक समय की बात है, चाणक्य पंडित तो कुछ ज़्यादा पहले साल पहले नहीं था, 2000 साल पहले हुआ है चाणक्य पंडित। और कलयुग को शुरू हुए, ये मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, कलयुग शुरू हुआ था 31,002 वर्ष पहले BC ईसा से 31,002 वर्ष पहले 20 फरवरी को 9:27:30 पे 3102 वर्ष BC मतलब। और भगवान का आविर्भाव हुआ था 3226 BC में, भगवान जो प्रकट हुए थे कृष्ण रूप में वो 3226 BC में प्रकट हुए थे। चेतन महाप्रभु इनके बाद 4712 वर्ष बाद प्रकट हुए थे चेतन महाप्रभु से, ये 1486 में गौर पूर्णिमा के दिन चेतन महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो ये कलयुग में धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है। धर्म के 4 पांव बताए गए हैं, सत्य, दया, तप, शौच, और अधर्म के भी 4 पांव बताए गए हैं ऐसे ही, झूठ बोलना, हिंसा, असंतोष और कलह। ये आप युग इस युग में जगह जगह देख रहे हैं। पहले धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म का पालन तो दूर, लोग नैतिक शिक्षा का भी पालन नहीं करते। आप देखते हैं सड़क पे निकलते ही व्यक्ति बीड़ी लगा के लेता है, सिगरेट लगा लेता है, पहले ऐसा नहीं था। लोग जो है, लोगों को लज्जा आती थी बाहर सड़क पे निकलते हुए कि आम सिगरेट पीते हुए बाहर जाएंगे, लेकिन ये कलयुग का लक्षण है, शराब पीना आम बात है। अब चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति से पंडित है। शिक्षित व्यक्ति कौन है? आज की शिक्षा का तो बुरा हाल है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान माने, दूसरे के धन को मिट्टी के समान माने, मिट्टी के ढेले के समान माने, और दूसरे व्यक्ति को अपने समान माने। क्योंकि दूसरी आत्मा को जैसा मुझे कष्ट होता है, ऐसे दूसरों को भी कष्ट होता है, इसलिए उनको कष्ट ना दे किसी तरह का, सारे जीवों को इसी समान माने। तो ये चीजों का नैतिक मूल्य भी तब तक नहीं आ सकते जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे। धर्म का और नैतिक मूल्यों का सवाल नहीं है जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में एक ही चीज की कमी है, वो है कृष्ण भावना अमृत। अब कृष्ण भावना अमृत हो तो कोई भ्रष्टाचार ना रहे, किसी तरह का दुराचार ना रहे, क्योंकि नैतिक मूल्य उसी से आते हैं। बगैर कृष्ण भावना अमृत के कितने भी आप भाषण दे लो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे भगवान की, तब तक नैतिक मूल्यों का सवाल ही नहीं उठता। तो नैतिक मूल्य डेवलप होंगे तभी समाज जो है शांति पूर्वक और संपन्न होगा। जैसे श्लोक में बताया गया है, गाय और बैल की संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति समाप्त होती जा रही है। हम हरिदास ठाकुर का एक किस्सा पढ़ते हैं चैतन्य भागवत में। हरिदास ठाकुर आप सबको पता है कितने बड़े महाभागवत थे, हैं? उनको अद्वैत आचार्य ने अपने पिता के श्राद्ध के समय सबसे पहले उनको प्रसाद दिया था, श्राद्ध का प्रसाद सबसे पहले उनको दिया था। वो कहते रहे कि ये ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे आपसे, ये क्या कर रहे हो आप। तो उसने कहा, अद्वैत आचार्य ने कहा कि आपको खिलाना तो हजारों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, आपको खिलाना, इतने बड़े महाभागवत थे। एक जब वो फूलिया ग्राम के पास एक कुटिया में रह रहे थे, कुटिया में भजन करते, 300,000 नाम जप करते थे डेली वो, इसलिए उनको नामाचार्य कहा गया है। और वो नाम का स्वयं आचरण करते थे और प्रचार भी उसी का करते थे। कोई लोग तो आचरण करते हैं प्रचार नहीं करते, और कुछ प्रचार करते हैं आचरण नहीं करते, लेकिन वो दोनों कार्य करते थे। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वो थे। तो उनकी कुटिया में एक नाग रहता था, बहुत विश्वधर नाग रहता था। जो लोग फूलिया ग्राम के आसपास के उनके श्रद्धालु जो आते थे, उनको उसकी विष ज्वाला सहन नहीं होती थी उनसे। और उन्होंने कहा कि हजार हम तो इसमें नहीं रह सकते महाराज, इस कुटिया में नहीं आ सकते, हमको आगे यहाँ तो बड़ा विषधर रहता, हमारे शरीर जलते हैं उससे। हरिदास को कुछ नहीं होता था। तो हरिदास ने कहा कि तुम कल तक वेट करो, अगर ये चला गया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा कुटिया को। तो अगले दिन देखा सबने, सबके सामने वो विषधर, उसका वर्णन भी किया गया है कि उसके शरीर पे सफेद और काले धब्बे थे, पीले धब्बे थे, और वो छोड़ के चला गया। उसके बाद वो सांप नहीं आया वहां पर। तो हरिदास ठाकुर वहां रहते थे। एक दिन हरिदास ठाकुर एक शिकायत हुई हरिदास ठाकुर के खिलाफ, वहां पे काजी ने शिकायत की कि ये हरिदास ठाकुर मुसलमान होके हिंदुओं के देवताओं का नाम लेता है, ये अधर्म फैला रहा है, हैं? हमारे धर्म का नाश हो जाएगा इस तरह। तो सारे मुसलमान अगर इसका अनुशीलन करने लगे, इसका अनुसरण करने लगे, तो हमारे धर्म का क्या होगा। तो उस मुल्कपति ने हरिदास ठाकुर को बुलाया कि उसको लिया, अरेस्ट करके लिया उसको। हरिदास ठाकुर को ले गए, जेल में डाल दिया। तो जेल में जो कैदी थे वो हरिदास ठाकुर को देख के बहुत प्रसन्न हुए, हैं? सब उनको प्रणाम करने के लिए आए। जब वो प्रणाम कर रहे थे, हरिदास ठाकुर ने कहा कि ऐसे ही रहो। तो वो हैरान हो गए कि ये हरिदास ठाकुर ने क्या कह दिया, हम तो जेल में हैं, क्या हम जेल में ही रहेंगे हमेशा के लिए, हैं? तो हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि जब तुम मुझे देख के कृष्ण भावनामृत में हो, ऐसे ही रहो, कृष्ण भावनामृत में रहो हमेशा, मेरा ये आशय था। तो ऐसे ऐसे हरिदास ठाकुर उच्च नाम जप किया करते थे, अपने मन मन में नहीं करते थे, उच्च स्वर से नाम जप करते थे। एक दिन पुलिया गांव के पास में हरी नदी गांव है, उस गांव में वो जप करते जा रहे थे, उच्च स्वर से जप कर रहे थे। तो वहाँ एक वृंदावन ठाकुर लिखते हैं, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर की लिखी हुई है, वो लिखते हैं कि एक ब्राह्मण विप्राधम लिखते हैं उसको, एक ब्राह्मण आया और वो कहने लगा, ए हरिदास ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है, किस शास्त्र में लिखा है कि तुम इतने ऊंचे ऊंचे जप करो, कहीं से ये हो सकता है कि तुम एकादशी को जप कर लो, हैं एकादशी को सारे आज जप कर लो, या चतुर्मास में तो बिल्कुल ही मना है ना भगवान का नाम लेना, भगवान तो सोते हैं, देवी देवता सोते हैं सारे, भगवान का नाम लेना चतुर्मास में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसलिए तुम्हारा एक ऐसा व्यवहार है जी, और ये ब्राह्मणों की सभा है, तुम आके यहाँ अपना उत्तर दो। उसको बुलाए हरिदास ठाकुर को बुलाए, एक तो उसका शुरू में ही हरिदास ठाकुर को एड्रेस करना कितना अजीब था, ए हरिदास कितने महाभागवत को आप कैसे बोल रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने वहां जाके कहा कि सुनिए, मैंने जो आपसे ही सीखा है, मैं तो मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था, मैंने आपसे ही सीखा है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भगवान का नाम उच्च स्वर से जप करना और मन मन में जप करना उससे 100 गुना श्रेष्ठ है। नारदीय पुराण का उन्होंने उल्लेख किया कि नारदीय पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप उच्च स्वर से जप करते हो तो आसपास के जीव जंतु जो हैं उनको भी उद्धार हो जाता है, वो भी जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं। आप तो अपने अपने लिए जप करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति तो अपने लिए जप करता है, और एक उच्च स्वर से जो जप करता है उसके सुनने वाले भी कर जाते हैं सारे, इसलिए हरि नाम उच्च स्वर से जप करना ये 100 गुना श्रेष्ठ है। और आप देखिए पद्म पुराण में लिखा गया है कि आप अगर एक व्यक्ति का पालन करते हैं और एक व्यक्ति अगर आप 1000 व्यक्तियों का पालन करते हैं तो कौन सा श्रेष्ठ है, उसमें जो 1000 व्यक्तियों का पालन करता है वो तो उससे 1000 गुना श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान का नाम उच्च स्वर से जप करना यही श्रेष्ठ बताया गया है, सारे शास्त्रों में ये बताया गया है। लेकिन वो नहीं माना कि नहीं आप गलत कह रहे हो, और उसने क्या कहा कि हमने तो सुना था कि अब तक 6 ही दार्शनिक हैं हिंदू जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हैं गौतम कणाद पतंजलि अष्टावक्र हैं ये इस तरह के जैमिनी, ये 6 जो दार्शनिक हैं और एक 7वां दार्शनिक और आ गया हरिदास ठाकुर हैं, ये सच लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कलि के अंत में जो है वो शूद्र जो शास्त्रों की व्याख्या करने के लगेंगे, या कलि का अंत तो नहीं है तो शुरू में ही करने लगे, शुरू में ही शूद्र शास्त्रों की व्याख्या करने लगे, ऐसा ऐसा उसने बोला। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस पर टीका करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है भागवतम के चेतन भागवतम के ऊपर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जो किसी देवता का नाम लेके और मन मन में जप करता है वो उसको नाम देने वाला और स्वयं वो भी दोनों नरक में जाते हैं, दोनों यम यातनाओं के पात्र हैं। क्यों? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो किसी एक देवता का नाम लेता है वो 10 के 10 नाम अपराध करता है। कैसे? नंबर 1 को पहला अपराध कौन सा? भगवान नाम के प्रचार करने वाले आचार्यों का वो उनकी निंदा करता है। नंबर 2 वो किसी भी देवता को भगवान के नाम समझता है, भगवान के नाम के बराबर समझता है, ये दूसरा अपराध होगा है। वो गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु कौन है? यही कृष्ण तत्वेता से ही गुरु है, है? वो किसी को गुरु मान लेता है और वैष्णव ऐसे गुरुओं की जो अवज्ञा करता है, तो तीसरा नाम अपराध होगा है। वो जो वैदिक शास्त्रों के प्रमाणों का खंडन करता है, वैदिक शास्त्रों में सारी जगह बताया गया है कि भगवान के नाम का जप करो ऊंचे ऊंचे, और केवल भगवान का नाम जप करना ही बताया गया, देवी देवताओं का नाम जप करना नहीं बताया गया कहीं। विदुर जी जब यात्रा कर रहे थे तो विदुर जी की यात्रा में लिखा हुआ है कि 5000 साल पहले किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं होता था कहीं, केवल विष्णु मंदिर होते थे, ये कलियुग की शुरुआत है, सारे देवी देवताओं के मंदिर बनना, किसी मनुष्य या देवी देवता का मंदिर नहीं हो सकता। यह हरदास मोहन ने, विदुर जी ने पूरे भारत की यात्रा की थी, कहीं भी उनको हिंदू देवी देवता का मंदिर नहीं मिला, कहीं केवल भगवान विष्णु कृष्ण के मंदिर थे। नंबर आगे, वो भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझता है, भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करता है कि, और वो वैदिक कर्म कांड आदि शुभ क्रियाओं के समान समझता है उसको। ये अपराध करते, सारे अपराध हैं ये। अश्रद्धालु व्यक्ति को वो नाम की महिमा बताता, वो कहता है कि ये देवी देवताओं का नाम ही सब कुछ है, इसी को जपो है, और वो नाम के बल पर पाप करता रहता है। वैष्णव अपराध करता है, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। तो वो तो दोनों, उसको मंत्र देने वाला भी, वो स्वयं भी, सभी जो है नरक में गिरते, यम यातना के पात्र होते हैं। और बताया गया है हरिभक्ति विलास में, और साथ में महाभारत में भी बताया गया, अगर किसी ने वैष्णव गुरु से दीक्षा ली है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए उसको अपने गुरु को त्याग के, त्याग का प्रोविजन बताया गया है कि अपने गुरु को त्याग के वैष्णव गुरु धारण करना चाहिए, अपने वैष्णव गुरु से दीक्षा लेने के लिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है। तो ये कलयुग की स्थिति है, जब ब्राह्मण लोग ही ऐसे अपराध करते हैं, दूसरों से क्या आप आशा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें केवल भगवान विष्णु कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काना उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे किसी की कोई कामना है या नहीं है, तीव्र योग से भक्ति करनी चाहिए। तीव्र कैसे बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को मुंडी पकड़ के पानी में डुबो दिया जाए और वो पानी से निकलने के लिए कितना उत्सुक होता है, कितना व्यग्र होता है, ऐसी व्यग्रता से जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तब जाके सफलता मिलेगी, साधारण तरीके से भक्ति करने से नहीं। इतनी व्यग्रता लौल्यम में ही केवलम मूल्यम बताया गया है कि लालच इतना होना चाहिए, जितना हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग कर्मी लोग, ऐसी मेहनत अगर भगवान के लिए करेंगे तो भक्ति का फिर जो कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त होगा। वो भी निरपराध भाव से बहुजनम करे यदि श्रवण कीर्तनम, बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन करने पर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता जब तक के निरपराध भाव से भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ, नहीं सुनना, अपने आप को सुनना चाहिए ना, कम से कम मन मन में नहीं, ऐसे कहीं नहीं बताया गया। अपने आप इतना तो कम करना चाहिए कि अपने आप आपको सुने, श्रवणम कीर्तनम ये भक्ति पूरी हो जाती है, और स्मरणम भी, तीन भक्ति पूरी हो जाती है इसकी। अवल तो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि नाम है ते नवदा भक्ति है, नौ की नौ भक्ति पूरी हो जाती है नाम से। नहीं, मन मन में जाप करना तो कहीं नहीं बताया गया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप सोच लो कि मैं मन मन में खाना खा रहा हूं तो क्या पेट भरेगा? क्या मन में खाना खा लिया मैंने, पेट नहीं भरेगा उससे, उसको सुन के करने पड़ेगा, मतलब अपने काम में सुनना चाहिए, कम से कम आवाज निकलनी चाहिए बिल्कुल। हाँ जी, हाँ लव, हाँ बिल्कुल। हाँ इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आपको सुनाई दे, आपका उद्धार होगा। अगर उच्च स्वर से करेंगे तो सबका उद्धार होगा जो सुनते हैं। हमारे कितने आचार्य, हमने अपने गुरु महाराज के साथ बाहर काउंसिलिंग की है, सड़क पर सैर करते हुए चले गए, वो बुला लेते कई कई बार, और उच्च स्वर से जब करते हैं उसको हम भी रूपा जी ऐसे ही करते थे। रूपा जी अपने शिष्यों का साथ ले जाते थे, साथ में घूमने के लिए, सैर करने के लिए, ऊंचे ऊंचे जब करते थे। हाँ तो देवताओं का नहीं, यज्ञ का लक्ष्य होता है विष्णु। सभी यज्ञों में आप जो भी यज्ञ करेंगे ना, वो विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता है। देवता तो अपने आप प्राप्त हो जाता है, देवता तो स्वयं ही संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब देवता मतलब आहुति डालते हैं उनको, देवताओं को, पर अल्टीमेट आखिरी आहुति जो होता है वो विष्णु को डाली जाती है, विष्णु के लिए। यज्ञ तो विष्णु है। देवता ऐसे हैं जैसे कलेक्टर जो होते हैं ना, हमारे टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करते हैं। अगर देवता अपने पास रख ले तो चोर हुए ना। जैसे भ्रष्ट, अगर ऑफर कोई टैक्स कलेक्टर अपने पास पैसा रख ले सारा है, तो वो तो चोर हुआ ना। तो उसको तो भगवान को देना होता है सारा कुछ, सरकार को देना होता है टैक्स कलेक्टर को पैसा सारा, तो भगवान को जाता है सारा। और कृपा जो होती है वो भगवान से आती है सारा। देवी देवता अपने आप नहीं दे सकते कोई भी कृपा, भगवान से मंजूरी होकर आती है। जैसे फाइल ऊपर प्रधानमंत्री तक जाती है ना, ऐसे जब भगवान के से जाकर मंजूरी होकर आएगी तभी मिलेगा, जो भी मिलेगा। हाँ ये तो लिखा तो हुआ तुझे कहीं, पृथ्वी तो उससे भी पहले पृथ्वी लिखी गई है, मतलब पृथ्वी महाराज से पहले भी पृथ्वी लिखी गई है। हाँ।